दिन भर 23 नवंबर शुक्रवार सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कराची में चीन के वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथी हमले में 3 संदिग्ध हमलावर समेत 7 लोगों की मौत।
जैसे फायरिंग की आवाज आई मैंने दरवाजा खोल के बाहर से निकला, इस बैरियल थे यार 3 बंदे थे वो ऐसे गोलियां को मार रहे थे।
भारत प्रशासित कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने 6 चरमपंथियों को मारने का दावा किया। विवेचना में चर्चा लिट्टे के संस्थापक वेलुपिल्लई प्रभाकरण की।
जब ये साफ जाहिर था श्रीलंका की सेना है वो एलटीटी को मारने वाली है, एलटीटी के सारे कमांडर एक एक करके मर रहे हैं और जनता बिल्कुल नाराज है, उस समय भी उसने ये कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, ये उसका पागलपन था।
खबरें होंगी और भी लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। चीन ने पाकिस्तान स्थित अपने वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। ये हमला चरमपंथियों ने पाकिस्तान में चीन की परियोजनाओं के विरोध में किया। हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है जिनमें 3 संदिग्ध हमलावर भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि चरमपंथी अपने इरादों में सफल नहीं होंगे। पाकिस्तान में ही हुए एक दूसरे धमाके में 30 लोगों के मारे जाने की खबर है। मारे गए लोगों में कई बच्चे भी शामिल हैं। ये दूसरा धमाका खैबर पख्तूनख्वा के एक बाजार में हुआ है। गौरी लंकेश हत्या मामले में एसआईटी ने सेशन कोर्ट में 9,230 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। अमूल काले को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा 16 और लोगों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। इन सभी पर हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं। एसआईटी ने कोर्ट से एक और रिपोर्ट दाखिल करने की इजाजत मांगी है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो अफ्रीका में खतना प्रथा की समस्या से निपटने के लिए $64 मिलियन की सहायता राशि देगी। ब्रिटेन ने उम्मीद जताई है कि ये प्रथा अगले 12 सालों में खत्म हो जाएगी। खतना की प्रक्रिया में लड़की के जननांग के बाहरी हिस्से को काट दिया जाता है। ये पैसा जमीनी स्तर की उन संस्थाओं को दिया जाएगा जो लड़कियों को इस बारे में जागरूक करती हैं और समाज के बड़े बूढ़े लोगों को उनकी सोच भी बदलने की कोशिश करती है। ब्रिटेन के मंत्रियों का कहना है कि इससे ब्रिटेन की उन लड़कियों के लिए भी खतरा कम हो जाएगा जिन्हें खतना करने के लिए ब्रिटेन से बाहर ले जाया जाता है। सोमालिया में जन्मी कार्यकर्ता लियला हुसैन खतना प्रथा का विरोध करती रही हैं। उन्होंने बीबीसी से बातचीत में ब्रिटेन के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा,
As a British citizen, I'm very proud of my government for actually taking such a step because I've said for many, many years.
एक ब्रिटिश नागरिक होने के नाते मैं अपनी सरकार के इस कदम पर बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत सालों से कहती आ रही हूँ कि खतना महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा का भयानक रूप है। मुझे लगता है कि ब्रिटेन की सरकार ने बाकी दुनिया को दिखा दिया है कि नेताओं को हमारी लड़कियों की भलाई के लिए पैसा खर्च करना चाहिए। कई युवा महिलाएं खतना प्रथा के विरोध में बड़ा अभियान चला रही हैं। ये थे कार्यकर्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सैमसंग ने अपने उन कर्मचारियों से औपचारिक तौर पर माफी मांगी है जिन्हें सैमसंग के सेमीकंडक्टर कारखानों में काम करने के बाद कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियां हो गईं। खबरों के मुताबिक खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आने से 118 लोगों की मौत हो गई थी। सैमसंग के सह संस्थापक किम की नाम ने पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति गहरा अफसोस जताया है। उन्होंने माना कि कर्मचारियों की सेहत का ध्यान नहीं रखा गया। सैमसंग पहले ही कह चुका है कि 1980 के दशक के मध्य से कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी $133,000 तक के मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं। हॉन्ग सॉन्ग की बेटी की 2007 में कैंसर से मौत हो गई थी। उन्होंने सभी कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने पत्रकारों से कहा, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये साबित करके रहूंगा कि कंपनी उसकी मौत की जिम्मेदार है। हालांकि अपनों को खोने का हमारा दर्द कभी कम नहीं हो पाएगा। अब भी कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये थे एक पीड़ित के पिता हॉन्ग सॉन्ग की के शब्द। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने जनता से सीधी अपील की है कि वो उनकी ब्रेक्जिट डील का समर्थन करें। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं दिन भर संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन सकते हैं। पाकिस्तान के कराची में चीन के वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथी हमले में 3 संदिग्ध हमलावर समेत 7 लोग मारे गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि ये हमला उसी ने किया है। चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। हमले के बारे में चीनी वाणिज्य दूतावास के एक कर्मचारी ने बीबीसी को बताया।
जैसे फायरिंग की आवाज आई, मैंने दरवाजा खोल के बाहर देने के लिए, इस बैरियल थे यार, 3 बंदे थे, वो ऐसे गोलियां घुमा रहे थे, अलग अलग थे, साथ भी नहीं थे। इधर से रेंजर्स वालों भी उनके साथ मुकाबला, एफसी वाले पुलिस वाले कर रहे थे उनके साथ। फिर मैंने अंदर इतला दी, दरवाजा लॉक किया, बाहर बंदे जो क्लाइंट हमारे बैठे थे, जो वीजे के लिए आते हैं, उनको मैंने अंदर किया लॉक बंद करके। फिर चाइनीज ने पूछा क्या मतलब, मैं दहशत गर्द अंदर भागो, उनके दरवाजे लॉक किए, कमरों में बंद किया उनको। फिर मैंने अलमारियां उठा के दरवाजे के ऊपर लगाई, मन किया कुछ इनको रंडक हो जाए। फिर कुर्सियां लगाई उनके पीछे, मैंने उनकी गोलियां मारी। 3 लोग थे दरवाजे को, एक लोग उनका टूट गया और दरवाजे क्रास भी गोलियां हो गया, अलमारी थी कुर्सियों के भी क्रास हो गया। फिर हमने 115 पे कॉल की, मैंने अपनी कंपनी को इतला दी और इसी टाइम ही मैंने कहा वीजे ऑफिस वाला बाहर वाला दहशतगर्द पहुंच गए नए हाल में, अभी इनको क्लियर कराओ, न तो हमारे 18 बंदे हैं, 3 चाइनीज हैं और हम पाकिस्तानी हैं, 18 बंदों के हम नहीं बच सकते। फिर तो अंदर घुसा फिर किसको छोड़ेंगे वो बेगरत है। फिर हमने उनको बाथरूम में बंद कर दिया सब कुछ, अल्लाह ने राम कर दिया बस।
कराची हमले के एक प्रत्यक्षदर्शी के शब्द। इस हमले के बारे में और जानकारी दे रहे हैं कराची से बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल।
आज सुबह 9:30 के करीब ये इलाका मैदान जंग बना हुआ था। 3 अस्कृत पसंदों ने यहाँ पर चाइना के सफारतखाने पर हमला किया है और ये जो वीजा सेक्शन है उसमें वो दाखिल हो गए थे, जहाँ पर 2 अफराद हलाक हुए। उसके बाद मुसलसल यहाँ पर जो लड़ाई जारी रही थी, कोई 1.5 घंटे के दौरान जो रेंजर्स पुलिस की कार्रवाई में 3 जो अस्कृत पसंद थे वो हलाक हुए हैं, जबकि यहाँ पर 2 जो पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूल थे वो भी हलाक हुए हैं। इसके अलावा 2 अफराद जो वीज़ा लेने के लिए आए थे वो भी इस कार्रवाई में हलाक हुए हैं। इस चाइनीज काउंसलेट पर जो अभी बताया गया है कि 35 जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और एफसी के लोग शामिल थे। इस वक्त जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है, तहम पुलिस और जो हुकूमती हुकाम हैं वो इसकी तस्दीक नहीं कर रहे और उनका कहना है कि अभी तक इसकी तफ्तीश होनी है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चाइना का दौरा किया था, उसी पैक के हवाले से जो मुज़ाकरात किए थे। मुबस्सिरीन इस कार्रवाई को सी पैक पर एक हमले की जो साजिश करार दे रहे हैं। याद रहे कि जो बलूचिस्तान के एक जो अस्कृत पसंद ग्रुप हैं वो बलूचिस्तान पर सी पैक मंसूबे के मुखालिफ हैं और उनका कहना है कि इससे वो अक्लियत में शामिल हो जाएंगे।
कराची में चीन के वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथी हमले में 3 संदिग्ध हमलावर समेत 7 लोगों की मौत, जानकारी दे रहे थे बीबीसी संवाददाता रियाज सुहेल कराची से। इधर भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस ने आज 6 चरमपंथियों को मारने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि इन चरमपंथियों में लश्कर-ए-तैयबा का एक टॉप कमांडर भी शामिल है, जो पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले में अभियुक्त था। वहीं सेना ने कहा है कि ये ऑपरेशन चरमपंथियों के खिलाफ एक सर्जिकल ऑपरेशन था। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर दक्षिणी कश्मीर के जिला अनंतनाग के सटकीपोरा इलाके में शुक्रवार रात को एक सूचना के आधार पर पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने इलाके को घेरे में लिया था, जहां चरमपंथी छुपे हुए थे। पुलिस के मुताबिक इलाके को घेरे में लेने के बाद छुपे चरमपंथियों ने सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी छुपे चरमपंथियों पर दावा बोला। फायरिंग के तबादले में 6 चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया है। श्रीनगर में सेना के 15वीं कोर के जीओसी AK भट्ट ने बारामूला में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए 6 चरमपंथियों के खिलाफ ये सर्जिकल ऑपरेशन था।
सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है, इसमें सेना और पुलिस का पूरा कोऑपरेशन था।
पुलिस ने अपने एक बयान में बताया है कि मारे गए 6 चरमपंथियों में से एक चरमपंथी आजाद अहमद मलिक वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या के मामले में एक आरोपी था, जिनका नाम केस की जांच के दौरान सामने आया था। गौरतलब है कि इसी साल जून के महीने में शुजात बुखारी की श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हमले में उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड भी मारे गए थे। पुलिस ने इस मामले में 4 चरमपंथियों को बुखारी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। आया था। पुलिस ने बताया है कि मारे गए छह चरमपंथी सुरक्षा बलों पर किए गए कई सारे हमलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने मारे गए चरमपंथियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद करने का भी दावा किया है। पुलिस ने बताया है कि मारे गए सभी चरमपंथी सिथानिया थे। आजाद मलिक के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम संस्कार में शामिल लोग आजादी के नारे लगा रहे थे। चरमपंथियों के मारे जाने की खबर के बाद अनंतनाग कस्बे और बिजभाड़ा कस्बे में सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। इस मुठभेड़ के बाद अनंतनाग में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। बीते दो वर्षों में कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों में सैकड़ों चरमपंथी मारे गए हैं। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
BBC इंडिया बोल।
जम्मू कश्मीर में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। क्या राज्यपाल को PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए था? यही है इस बार BBC इंडिया बोल का विषय। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 24 नवंबर को मुफ्त फोन करें इन नंबरों पर 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
कांग्रेस नेता CP जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमा भारती किस आधार पर हिंदू धर्म की बात करते हैं, जबकि धर्म पर बोलने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। एक समय राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के नेता CP जोशी के इस बयान को कांग्रेस की नर्म हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। CP जोशी के इस बयान के पीछे क्या वाकई कोई रणनीति है, या ऐसा बयान उन्होंने पार्टी में अलग थलग पड़ जाने की वजह से दिया है? सुनिए फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
अरे इस देश में धर्म के बारे में कोई जानता तो पंडित जानते। ये अजीब देश हो गया। इस देश में उमा भारती लोधी समाज की है, वो हिंदू धर्म की बात कर रही है। साध्वी जी किसी धर्म की, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी किसी धर्म की, हिंदू की बात कर रहे हैं।
राजस्थान के नाथद्वार से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस लीडर CP जोशी के इस वीडियो को एक BJP नेता ने ट्वीट किया। ट्वीट में हर्ष सांगवी ने लिखा कि इस वीडियो में दरअसल संदेश ये दिया जा रहा है कि नीची जाति से ताल्लुक रखने वाले मोदी को धर्म के बारे में क्या मालूम। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने CP जोशी के बयान को कांग्रेस के आदर्शों के खिलाफ बताते हुए उन्हें खेद प्रकट करने को कहा और जोशी ने बयान के लिए माफी भी मांग ली, लेकिन बात सिर्फ इस बयान की नहीं है। चंद दिनों पहले पूर्व कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर जारी एक बहस में ब्राह्मणों की तुलना यहूदियों से की। यहूदी जिनका दूसरे विश्व युद्ध के आसपास बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया था। कारवां पत्रिका के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल कहते हैं कि इन बयानों में धर्म की राजनीति के साथ साथ स्वर्णों को कांग्रेस की तरफ वापस खींचने की पॉलिटिक्स भी शामिल है। स्वर्ण जिनमें से ब्राह्मण और राजपूत एक समय कांग्रेस के मजबूत गढ़ माने जाते थे।
ये दोनों चीजें आप देखिए क्यों बार बार आ रही हैं। आप 2014 के इलेक्शन देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा किसी भी वोट बैंक की कंसोलिडेशन हुई है तो वो अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक की BJP के प्रति कंसोलिडेशन हुई।
हालांकि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद इस बात से इनकार करते हैं कि ये पार्टी की राजनीति का हिस्सा है और कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी CP जोशी से अपने बयान पर खेद प्रकट करने को नहीं कहते। मगर उनका कहना है कि मनीष तिवारी का बयान एक अलग संदर्भ में था।
मनीष तिवारी जी की बात और CP जोशी जी की बात दोनों अलग अलग है। मनीष तिवारी जी ने कहा कि हम लोगों को एक नए यहूदी की तरह, जैसे जर्मनी में हिटलर के टाइम में हुआ था, वैसे ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। किसी भी कास्ट को, किसी भी समाज को अगर कोई टारगेट करेगा तो आम आदमी को बुरा लगना चाहिए, और खास कर जब कोई उस समाज का आदमी है तो उसको और बुरा लगता है।
शकील अहमद भले ही कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से इनकार कर दें, लेकिन लोग उदाहरण देते हैं राहुल गांधी की शिवभक्ति, उनके उज्जैन, मानसरोवर और केदारनाथ की यात्रा का, जिसकी प्रचार करने में पार्टी ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीतिक विश्लेषक भारत भूषण कहते हैं कि इसे पार्टी द्वारा अपनी छवि बदलने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि जो BJP ने ये परसेप्शन क्रिएट किया है कि वो प्रो मुस्लिम पार्टी है, उस इम्प्रेशन को कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए उन्होंने ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला अपना स्टैंड लिया है। कभी कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने उधारी है, कभी कहते हैं शिव भक्त हैं, कभी कहते हैं मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं।
गुजरात चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने कुछ यही रणनीति अपनाई। हालांकि वो बीजेपी को हरा नहीं पाई, लेकिन मोदी के व्यक्तित्व के बावजूद भी पार्टी को वहां भारी क्षति हुई। कर्नाटक में भी कांग्रेस अध्यक्ष ने मठों और मंदिरों के चक्कर काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हरतोष बल कहते हैं कि कांग्रेस शायद आश्वस्त है कि देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों का वोट उसी के खाते में जाएगा, तो अब अधिक से अधिक हिंदू वोट को अपने पक्ष में किया जाए।
ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि डिफैक्टो फिर इंडियन पॉलिटिक्स एक हिंदू पॉलिटिक्स बन रही है। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ये नहीं समझ रही है कि इसी पॉलिटिक्स के कारण धीरे धीरे ट्राइबल्स ने उन्हें छोड़ा है, दलित्स ने छोड़ा है, सबकी या तो अपनी पार्टीज मोबिलाइज हुई है या वो बीजेपी की तरफ चले गए हैं। कि जमाना आ रहा है, ऑलरेडी कई जगह यूपी बिहार में देखा है कि जहां पे मुसलमानों के पास भी ऑप्शन है वो कांग्रेस को छोड़ के कहीं और वोट दे रहे हैं।
कई जगह खबरें हैं कि कभी राहुल गांधी के करीबी बताए जाने वाले सीपी जोशी ने यह भी कहा था कि वो राजीव गांधी ही थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और वहां पूजा अर्चना किए जाने की छूट दी। इसीलिए राम मंदिर का निर्माण भी कांग्रेस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही होगा, यानी राजनीति राम के नाम की। पर शायद कांग्रेस को याद नहीं कि 1984 में जो बीजेपी महज 2 सीटों पर थी, वो राम मंदिर आंदोलन के बाद 1989 में 88 पर पहुंच गई और 2014 के बाद से अपने दमखम पर केंद्र में सत्ता में मौजूद है और देश के कम से कम 11 राज्यों में उसकी अपनी सरकारें हैं और कई अन्य में वो सत्ता में साझेदार है। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी दिल्ली।
तमिल राष्ट्र के लिए श्रीलंका को गृह युद्ध में ढकेलने वाले वेलुपिल्लई प्रभाकरण को कुछ लोग, खासकर तमिल राष्ट्रवादी, अब भी महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और जननायक मानते हैं। वहीं कुछ लोगों की नज़र में वो दुनिया के चोटी के चरमपंथी थे जिनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं थी। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के संस्थापक प्रभाकरण की 64वीं वर्षगांठ पर उनके जीवन के दिलचस्प पहलुओं को याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
ये है LTTE के नेता वेलुपिल्लई प्रभाकरण की आवाज, जो अंतिम बार नवंबर 2008 में तमिल विद्रोहियों के शहीद दिवस कार्यक्रम में सुनी गई थी। जिस हिंसा के पैरोकार प्रभाकरण थे, उसका अंदाजा श्रीलंका के बाहर के लोगों के लिए लगा पाना मुश्किल है। एक आजाद तमिल देश की इच्छा लिए प्रभाकरण ने 26 सालों तक श्रीलंका की सरकार के साथ संघर्ष किया। इस लड़ाई में कुल 70,000 लोग खेत रहे, जिसमें खुद प्रभाकरण भी शामिल थे। अंतिम दम तक वो कहते रहे कि तमिल ईलम के संघर्ष में युद्ध विराम एक सही विकल्प नहीं है। 2002 में प्रभाकरण ने किलोनेची में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया था, जिसमें मौजूद थे बाद में उन पर किताब लिखने वाले M.R. नारायण स्वामी।
लिट्टे के कैंप में हम लोग ने रात बिताई, सुबह उठे नहाने के लिए, वहाँ कुआं था, वहीं पर हम लोगों ने नहाया। हमने जो सिक्योरिटी वहाँ पर देखा, 32 सालों के हमारी जो पत्रकारिता है, उसमें मैंने कभी भी ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं देखा। उन लोगों ने एक एक करके, हम जितने भी पत्रकार थे, एक एक को कमरे में बुलाया, हमारे नोटबुक, हमारे पेंसिल, पेपर, पेन, हर चीज का उन्होंने बड़ा डिटेल में देखा, बल्कि नोटबुक और पेन को तो उन्होंने ले ही लिया। हम सबको अलग अलग करके उन्होंने फोटोग्राफ लिया। कैमरामैन जो थे, उन लोगों को तो ये कहा कि आप अपने कैमरास को जो है एक वहां पर एक तराजू सा रखा हुआ था उस पे रखें और उसमें हम तोलना चाहते हैं कि इसका वजन क्या है। तो नेचुरल है कि लोगों ने कहा कमाल है इसमें। बाद में हमें पता चला कि उनके पास ये जो जितने कैमरास होते हैं उन सबके ओरिजिनल वेट उनको मालूम था, तो वो ये देखना चाह रहे थे कोई किसी कैमरा के अंदर कोई चीज ऐसी चीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो उसका वेट बढ़ा हुआ है। उन लोगों ने बकायदा हमारे हाथों में और पाँव में सब जैसे मसाज करते हैं उस ढंग से उन्होंने देखा कि भाई कहीं इसके मसूस तो नहीं है लोगों के, कोई ये ट्रेंड लोग तो नहीं है जो पत्रकार के नाम से हमारे यहाँ आ गए हैं।
एक और पत्रकार जिन्हें प्रभाकरण से कई बार मिलने का मौका मिला, वो हैं CNN की भारत में ब्यूरो प्रमुख रह चुकी और एक मशहूर किताब आइलैंड इन ब्लड की लेखिका अनीता प्रताप।
He is possibly one of the most remarkable men that I've met in my life. I have never met another person with such clarity of vision.
मेरी आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई जिसके पास इतनी साफ दिव्य दृष्टि और अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता हो। जबरदस्त दूरदर्शिता भी थी उनमें। मुझे याद है कि जब भारत उनकी मदद कर रहा था हर तरह से, हथियारों से, पैसों से, मैं उनसे मिलने गई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि एक दिन उन्हें इन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मुझे इस पर सहसा यकीन नहीं हुआ था।
प्रभाकरन का पहला शिकार गिलहरियां, चिड़ियां और गिरगिट थे और पहला हथियार एक मामूली गुलेल। फिर उन्होंने बंदूक उठाई और जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरैयप्पा को खुद अपने हाथों से गोली मारी। इसके बाद जो भी उनकी राह में आया, चाहे वो अमृत लिंगम हो या तिरुचेलवम या राजीव गांधी या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा, उन्होंने किसी को नहीं बख्शा।
मैं एक ऐसे तमिल मिलिटेंट को जानता हूँ, वे आज के तारीख में जिंदा नहीं है, जो बहुत साल पहले एक बार प्रभाकरन से मुलाकात की थी उन्होंने वोनिया में, जब उनका वहाँ पर एलटीटी का एक छोटा सा कैंप था। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब मैं गया तो प्रभाकरन ने बोला कि यार हमारे साथ एक छोटा सा एक शूटिंग टेस्ट करो, देखते हैं आप सही गोली चलाते हो, हम सही गोली चलाते हैं। तो फिर एक जो मिल्क मेड का एक कैन होता है तो वो प्रभाकरन ने जाके रखा करीब 10-15 फीट दूर, और ये जो सज्जन थे इनका नाम शंकर राजी था, उनको कहा कि भाई चलो आप फायरिंग करिए। तो इन्होंने 15 फीट दूरी से जो है उन्होंने पिस्तौल से फायरिंग की, गोली उसे मतलब एक तरह से कोने में लगी और डब्बा थोड़ा गिर सा गया। फिर दोबारा उसी डब्बे को उन्होंने वहीं पर रखा, उस पिस्तौल को अपने हाथ में लिया, उसी जगह पर गए जहां से शंकर राजी ने फायर किया था और उन्होंने एम किया और फायर किया, और जिसे अंग्रेज में कहते हैं इट वॉज बुलसाई। ये जो शंकर राजी थे, इनकी तो ट्रेनिंग हुई थी पीएलओ के साथ लेबनान में। तो इन्होंने कहा कमाल की बात है यार, मैं लेबनान से पीएलओ की ट्रेनिंग लेके आ रहा हूं, मुझे बुलसाई नहीं हुआ, ये बंदा जो है यहां से जंगल से बाहर निकला हुआ आदमी नहीं है, ज्यादा तमिलनाडु जाता है, इसकी ट्रेनिंग कहां से हो गई। तो ये कह रहे थे कि मैं उससे पूछने ही वाला था जब मैंने अचानक देखा कि जिस जगह पर थे वहां पर एक किताब पड़ा हुआ था, हाउ टू शूट, वो लंदन में छपी हुई किताब थी, अंग्रेजी की किताब थी। तो ये जो है बिल्कुल टोटली सेल्फ टॉट थे, वो क्लिंट ईस्टवुड के मूवीज को कभी देखा करते थे और ये वेस्टर्न मूवीज भी देखा करते थे, वो वेस्टर्न मूवीज जहां पर वो कौवा टाइप लोग होते हैं जो मतलब बिल्कुल अचानक अपने होल्स्टर से पिस्तौल निकालते हैं, पीछे मुड़ते हैं और धड़ाम करके फायरिंग करते हैं। ये मूवी भी भाई बार बार देखा करते थे और हमें जब हम उनकी बायोग्राफी लिख रहे थे तो लोग उनके साथ जो 1970 के दशक में जुड़े हुए थे वो कहते थे कि वो इतना फैसिनेटेड था इस चीज से कि वो बार बार ट्रेनिंग कैंप में, जैसे कि कोई सामने कोई दुश्मन है, वो बार बार ये प्रैक्टिस करते रहते थे।
उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है। एक बार एशिया वीक पत्रिका ने उनकी तुलना जाने माने क्रांतिकारी चे गुवारा से की थी। वहीं न्यूज वीक ने कहा था कि वो जीते जागते लेजेंड हैं। श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह को उनसे कई बार मिलने का मौका मिला था।
उस वक्त प्रभाकरन दिल्ली से ट्रांजिट कर रहे थे बैक टू जाफना और कर्टसी कॉल के लिए आए थे मेरे पास मद्रास में। बड़े अदब के साथ मिले और बड़ी खुशी जाहिर की कि सीज फायर हो गया है और अमन चैन होगा उनके देश में। जब मैंने पूछा कि कोई ड्रिंक करेंगे तो कहने लगे कि नहीं, हम लोग तो ना ड्रिंक करते हैं ना सिगरेट। और पहली मुलाकात में तो यही लगा कि एक बहुत साधारण ऑनेस्ट मैन लगे मुझे। और बाद में जब मुलाकातें होती गईं तो फिर पता लगता गया कि ऐसी क्वालिटीज हैं उनमें जो कि लीडरशिप की अंदाज से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार क्वालिटीज थी।
1986 में जब भारत और श्रीलंका के बीच समझौता होने वाला था तो भारत ने उनको लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टर श्रीलंका भेजे थे। उनको, उनके पूरे परिवार और चुनिंदा साथियों को दिल्ली लाया गया था।
उस समय वो जाफना में थे और हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट हरदीपुरी गए थे वहां पर, और हरदीपुरी ने मुझे ये भी बताया था कि जब वो उसके घर पहुंचे जहां पर वो था तो प्रभाकरन बकायदा दरवाजे में खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। उनसे बात हुई, उन्होंने उनको बकायदा समझाया कि भाई इस तरह का एक समझौता होने वाला है और मोटे मोटे तौर पर समझौता ये होगा। तो उनको उसके बारे में काफी आकांक्षाएं थी, लेकिन उनको बोला गया कि भाई आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, उसके बाद ही सब कुछ होगा, तो आप आए दिल्ली करके। उनको परसुएड करके दिल्ली लाया गया, अशोक होटल में रहे, और जब उनको पूरी तरीके से पता चला कि जो एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया श्रीलंका के बीच में वो किस तरह का एग्रीमेंट है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे। और आखिरकार 28 जुलाई की शायद रात की बात है, वो और बालासिंघम राजीव गांधी को मिले और वहां पर उन्होंने बकायदा आश्वासन दिया कि हम इसको मानते हैं। और उस रात को मेरी बातचीत बालासिंघम से भी हुई थी और बालासिंघम ने मुझे कहा कि हाँ हमने माना है, लेकिन दिल से तो उन्होंने माना नहीं था। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उस समय राजीव गांधी को हिंदुस्तान के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने यह बताया था कि आप इसको छोड़े नहीं प्रभाकरण को, यहाँ से आप इसको बंदी बना के रखो दिल्ली में, और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि एलटीटी ने पूरे अपने हथियार जो है सरेंडर कर दिया है, तब तक इसको बंदी बना के रखो, इसको ऊपर विश्वास मत करो। लेकिन राजीव गांधी का पर्सनैलिटी अलग था, उन्होंने कहा भी उसने मुझे अपना कमिटमेंट दे दिया है तो मैं उस पर विश्वास करता हूं करके उन्होंने उसको छोड़ा। वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो गलती एक दिन जाके उनकी जान खा गई।
और तो और राजीव गांधी ने उन्हें चलते चलते अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपहार में दी थी। राजीव गांधी को रास्ते से हटाना प्रभाकरण के लिए बहुत महंगा पड़ा। इससे एलटीटीई पर प्रतिबंध तो लगा ही, उन्होंने भारतीय तमिलों की गुडविल भी खो दी। 2009 आते आते उनके संगठन में इतनी फूट पड़ गई कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। उन्होंने श्रीलंका की सेना की बढ़ती शक्ति को भी आंकने में गलती की। प्रभाकरण पर एक और किताब लिखने वाले जनरल राज मेहता कहते हैं,
जब इनकी ऑल आउट वॉर डिक्लेयर हो गई तो इनको मई के महीने में मुलाइटिवु एक कोस्टल एरिया है जहां पर इनको घेर लिया गया। लगभग 3 बजे 18 मई 2009 को आप कह सकते हैं लास्ट स्टैंड मतलब आखिरी मुकाबला डॉक्यूमेंट किया गया है, जिसमें एक लगून है नंदी कडल, ऐसे एक लगून के पास इन्होंने इनको घेर रखा था। अब गौर ये फरमाएं कि तीनों तरफ से जो लैंड साइड है वहां से घेर लिया, चौथी तरफ समुन्दर थी, समुन्दर में श्रीलंका नेवी का जाल बिछा हुआ था, तो मतलब कि बचने की जगह थी ही नहीं। और इस लास्ट स्टैंड में 9:30 बजे 19 मई को सार्जेंट मुथु बंदा रिपोर्ट करते हैं कर्नल जीवी रवि प्रिया को कि एक बॉडी मेरे सामने पड़ी हुई है, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रभाकरण की बॉडी है। तो उसको देखने के लिए लोग बड़ी एक्साइटमेंट में आए और देखा कि उन्होंने एक आइडेंटिफिकेशन डिस्क होता है जी, हर एक फौजी का डॉग टैग उसको बोलते हैं हंसी मजाक में, एल्युमिनियम का छोटा सा डिस्क होता है घड़ी जैसे पहना जाता है, उसमें नंबर था 001 और शरीर पर 2 पिस्तौलें थी जो सबको मालूम था कि ये ले चलते हैं। उसके बाद एक राइफल थी, शूटिंग राइफल थी विद टेलीस्कोपिक साइट, एक सैटेलाइट फोन था, डायबिटीज की जो दवाइयां थी वो भी इनके शरीर में एक छोटे से प्लास्टिक डब्बी में पाई गई।
प्रभाकरण ने तमिल ईलम का जो सुनहरा सपना देखा था वो एक लंबी लड़ाई में खून से तरबतर हो गया और अंत में उसमें उनका स्वयं का भी खून मिल गया। क्या वजह थी उनकी मौत की, M.R. नारायण स्वामी कहते हैं,
देखिए प्रभाकरण का जो पागलपन था उसके जिंदगी से जुड़ा हुआ था, ये उसका आखिरी दिन में बिल्कुल साफ नजर आया। जब ये साफ जाहिर था सब लोगों के लिए, जो श्रीलंका की सेना है वो बकायदा एलटीटी को मारने वाली है और लगातार आगे बढ़ रही है और एलटीटी लगातार पीछे हटती जा रही है, एलटीटी के सारे कमांडर एक एक करके मर रहे हैं या तो खुदकुशी कर रहे हैं और जनता बिल्कुल नाराज है, उस समय भी उसने ये कहा कि हम जो है सरेंडर नहीं करेंगे, ये उसका पागलपन था। क्योंकि कोई चारा भी नहीं था, भागे तो भागे कहां, हिंदुस्तान में कोई उसको शरण देने के लिए तैयार नहीं था और इनकी मिलिट्री ने उनको लास्ट मिनट तक आखिरी मोमेंट तक उसको चेस किया और पकड़ के मारा। वो कैसे मारा वो इसके बारे में काफी वाद विवाद है, आज भी लोग ये कहते हैं कि उसको पकड़ा गया था जिंदा, कोलंबो ले गए, वहां पर उसके ऊपर यातनाएं की गई, वहां पर उसे गोली मारा गया और वापस लाश को जाके यहाँ डाल दिया। कई लोग कहते हैं भाई नहीं उनकी मौत यहीं पर हुई, अब सच्चाई क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसकी मौत उसी ढंग से हुई जिस ढंग से उसने कई लोगों को मौत से गिराया।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज बारिश की भेंट चढ़ गया। बारिश की वजह से मैच रोके जाने तक ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवरों के खेल में 7 विकेट खोकर 132 रन बना लिए थे। 3 T20 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की 1-0 से बढ़त अब भी कायम है। सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। और वहीं ICC महिला विश्व कप के फाइनल में खेलने का भारतीय टीम का सपना आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली हार के साथ टूट गया। इंग्लैंड ने मैच 8 विकेट से अपने नाम किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाई और 19.3 ओवरों में 112 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लिश टीम ने लक्ष्य 17 गेंद रहते हासिल कर लिया। फाइनल अब रविवार को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
मुख्य समाचारों के लिए वक्त नहीं बचा है, दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो की कमान संभाल रहे थे शाकिर आलम। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारतीय समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।